एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जग की चिंता और धोखा देता है धन, बीज का ये नाश करे दबा दे यीशु के वचन, दबा दे यीशु के वचन। लोभ लालच में डूबा है मेरा मन, जग की चिंता धोखा देता है धन। देता है तन, बीज का ये वचन।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे पास आते हैं पिता। हम सबों को तू आशीष दे, हमारे मनों को खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को सुनकर समझ सके और तेरे राह में चलने सके। मेरे श्रोताओं को विशेष आशीष दे पिता, उनके संग विशेष रूप से हो ताकि वे तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में चलने सके। मेरे संग हो पिता, विशेष रूप से तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तेरे वचनों को बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है अनुग्रह की वाचा। अपराध के द्वारा पहली जोड़ी आदम और हवा पापी हो गए। पाप करने के बाद वे शैतान के गुलाम हो गए। शैतान का विरोध करने में वे सक्षम नहीं थे। क्या वे कभी मुक्त हो सकते थे या उन्हें नष्ट होने के लिए छोड़ दिया गया? क्या कोई आशा थी? परमेश्वर द्वारा पतित जोड़े के पापों की सजा सुनाने से पहले उसने अनुग्रह की वाचा का परिचय देकर उन्हें आशा दी। उसने कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3:15 में हम यह पाते हैं। परमेश्वर के संदेश ने प्रोत्साहन दिया क्योंकि उसने घोषणा की कि यद्यपि शैतान ने मानवता को अपने दुष्ट जाल में फंसा लिया था, अंततः वह पराजित होगा। वाचा परमेश्वर और मानवता के बीच बांधी गई थी। पहले परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से पाप के विरुद्ध बचाव की प्रतिज्ञा की। वह सांप और स्त्री के बीच, शैतान के अनुयायियों एवं परमेश्वर के लोगों के बीच बैर उत्पन्न करेगा। यह शैतान के साथ मनुष्य के संबंध को भंग करेगा एवं परमेश्वर के साथ एक नए संबंधों के लिए रास्ता खोलेगा। सदियों तक परमेश्वर की कलीसिया एवं शैतान के बीच युद्ध चला। संघर्ष मसीह यीशु की मृत्यु में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई, जो भविष्यवाणी किया गया स्त्री के वंश का व्यक्तिकरण था। कलवरी पर शैतान पराजित हुआ। हालांकि स्त्री का वंश घायल तो हुआ, लेकिन पाप के रचनाकार को हराया गया। जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, वे पाप के खिलाफ शत्रुता को जानेंगे, जो उन्हें शैतान के साथ लड़ाई में सफल बनाएगा। विश्वास के माध्यम से वे कलवरी पर उद्धार की जीत में हिस्सा लेंगे। पतन के पश्चात अनुग्रह की वाचा का विकास नहीं हुआ था। पवित्र शास्त्र बताता है कि सृष्टि से पहले ही परमेश्वरत्व के सदस्यों ने आपस में प्रतिवचनबद्ध कर लिया था कि यदि मनुष्य जाति पाप में गिर जाए तो उसे बचा लिया जाएगा। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उस मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया। हम यह पाते हैं इफिसियों 1:4-6 में, और इसका हम तुलना 2 तिमुथियुस 1:9 से कर सकते हैं। मसीह के क्षतिपूर्ति बलिदान के विषय में बोलते हुए पत्रस ने कहा, वह तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से ठहराया गया था। हम यह पाते हैं 1 पत्रस 1:20 में। वाचा एक अटल न्यू पर आधारित थी, परमेश्वर की स्वयं प्रतिज्ञा एवं शपथ पर, जो कि हम पाते हैं इब्रानियों 6:18 में। यीशु मसीह उस वाचा का जमानती था, इब्रानियों 7:22। एक जमानती वह होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में किसी भी ऋण या दायित्व को लेता है। मसीह का जमानती होने का अर्थ था कि यदि मानव जाति पाप में गिर जाती है तो वह उनकी सजा को भोगेगा, वह उनके छुटकारे की कीमत चुकाएगा, वह उनके पाप का प्रायश्चित करेगा, वह परमेश्वर की तोड़ी गई व्यवस्था की मांगों को पूरा करेगा। कोई भी मनुष्य या स्वर्गदूत इस उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं कर सकता था। केवल मसीह सृष्टिकर्ता मानव जाति का प्रमुख प्रतिनिधि ही इस जिम्मेदारी को ले सकता था। यह हम पढ़ सकते हैं रोमियो 5:12-21 में और 1 कुरिन्थियों 15:22 में। परमेश्वर का पुत्र केवल वाचा का जमानती ही नहीं है, वह इसका मध्यस्थ या कार्यान्वित करने वाला भी है। मनुष्य के अवतरित पुत्र के रूप में उसके विशेष कार्य के बारे में उसका विवरण उसकी भूमिका के इस पहलू को प्रकट करता है। उसने कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, यह हम पाते हैं लिखा हुआ है यूहन्ना 6:38 में। और हम इसे तुलना कर सकते हैं यूहन्ना 5:30-43 से। पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, यूहन्ना 6:40 में हम यह पाते हैं। और अनंत जीवन यह है, उसने कहा कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, पाते हैं यूहन्ना 17:3 में। अपने विशेष कार्य के अंत में अपने पिता के आदेश के कार्यान्वयन के विषय में गवाही देते हुए कहा, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, यूहन्ना 17:4। क्रूस पर यीशु ने वाचा में मानवता का जमानती के रूप में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, उसकी पुकार पूरा हुआ, जो पाते हैं यूहन्ना 19:30 में, ने उसके विशेष कार्य के समापन को चिन्हित किया। पश्चापी मानव जाति के उद्धार को सुनिश्चित करने के लिए उसने स्वर्ग के जीवन से उस दंड का भुगतान किया जो परमेश्वर की तोड़ी गई व्यवस्था की आवश्यकता थी। उस क्षण मसीह के लहू ने अनुग्रह की वाचा की पुष्टि की, उसके प्रायश्चित लहू में विश्वास के माध्यम से पश्चापी पापियों को परमेश्वर के बेटे बेटियों के रूप में अपनाया जाएगा। इस तरह से वे अनंत जीवन के वारिस बन जाएंगे। अनुग्रह की यह वाचा मानवता के प्रति परमेश्वर के असीम प्रेम को प्रदर्शित करती है। सृष्टि से पूर्व स्थापित की गई वाचा का प्रकटन पतन के पश्चात हुआ। उस समय एक विशेष अर्थ में परमेश्वर और मानवता भागीदार बन गए। वाचा का नवीकरण होता है। दुर्भाग्य से मानव जाति ने अनुग्रह की इस शानदार वाचा को दोनों प्रलय से पूर्व एवं उसके पश्चात अस्वीकार कर दिया। उत्पत्ति 6:1-8 और 11:1-9 में हम पाते हैं, जब परमेश्वर ने फिर से वाचा की पेशकश की तो उसने अब्राहम के माध्यम से ऐसा किया। उसने फिर से छुटकारे की प्रतिज्ञा की पुष्टि की और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी अब्राहम के लिए। हम इसे पाते हैं उत्पत्ति 22:18 में और इसका हम तुलना कर सकते हैं उत्पत्ति 12:3 और उत्पत्ति 18:18 से। पवित्र शास्त्र विशेष रूप से वाचा की शर्तों के लिए इब्राहिम की निष्ठा को उजागर करता है। इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास करता था और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हम यह पाते हैं उत्पत्ति 15:6 में। परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर होने के कारण वाचा के आशीर्वाद में इब्राहिम की भागीदारी उसकी आज्ञाकारिता पर भी निर्भर थी, जो यह बताती है कि वाचा परमेश्वर की व्यवस्था के अधिकार को बनाए रखती है। देखिए उत्पत्ति 17:1 और उत्पत्ति 26:5। इब्राहिम का विश्वास ऐसी उत्कृष्टता का था कि उसे यह उपाधि दी गई, उन सब का पिता जो विश्वास करते हैं, रोमियो 4:11। वह विश्वास द्वारा धार्मिकता के परमेश्वर का नमूना है जो खुद को आज्ञाकारिता में प्रकट करता है, रोमियो 4:2-3 और याकूब 2:23-24। इब्राहिम के प्राकृतिक वंशजों पर अनुग्रह की वाचा अपने आप ही आशीर्वाद प्रदान नहीं करती है, परंतु केवल उन्हीं पर जो इब्राहिम के विश्वास के उदाहरण का अनुसरण करते हैं। जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं, कहता है गलातियों 3:7। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति शर्तों को पूरा करके वाचा में उद्धार की प्रतिज्ञा का अनुभव कर सकता है। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो, गलातियों 3:29 में हम यह पढ़ते हैं। परमेश्वर की ओर से सिनै पर्वत की वाचा, जिसे पहली वाचा भी कहा जाता है, इब्राहिम की अनुग्रह की वाचा का नवीनीकरण था, इब्राहिम इब्रानियों 9:1। परंतु इसराइलियों ने इसे कर्मों की वाचा में बदलकर विकृत कर दिया था। गलातियों 4:22-31। बाद में बाइबल के अनुच्छेद एक नई वाचा या बेहतर वाचा के विषय में हम पाते हैं। बाइबल यह कहती है, परंतु वह ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि अनंत वाचा को बदल दिया गया, बल्कि इसलिए कि पहला, इसराइलियों की बेवफाई के कारण परमेश्वर की अनंत वाचा को कार्यों की प्रणाली में विकृत कर दिया गया था। दूसरा, यह यीशु मसीह के अवतरण, जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान एवं मध्यस्थता में परमेश्वर के प्रेम के एक नए प्रकटन से संबंधित था। इब्रानियों 8:6-13। और तीसरा है, यह तब तक नहीं होना था जब तक कि क्रूस पर मसीह के खून से इसकी पुष्टि नहीं की जाती। दानियल 9:27, लूका 22:20, रोमियो 15:8 और इब्रानियों 9:11-22। जो लोग इसे स्वीकार करते हैं, यह वाचा उन्हें बहुत अधिक प्रदान करती है। परमेश्वर के अनुग्रह से यह उन्हें उनके पापों की क्षमा प्रदान करती है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदयों पर 10 आज्ञाओं को लिखने का कार्य एवं पश्चाताप करने वाले पापियों को उनके सृष्टिकर्ता के स्वरूप में उनकी पुनर्स्थापना प्रदान करती है। पढ़िए यिर्मयाह 31:33 और देखिए, नई वाचा नए जन्म का अनुभव मसीह की धार्मिकता एवं विश्वास द्वारा दोष मुक्ति का अनुभव प्रदान करती है। हृदय का नवीनीकरण व्यक्तियों को रूपांतरित कर देता है ताकि वे आत्मा के फल लाएं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। गलातियों 5:22-23। मसीह के अनुग्रह की शक्ति के द्वारा वे उस प्रकार चल सकते हैं जैसा मसीह चला। प्रतिदिन उन वस्तुओं का आनंद लेना जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। यूहन्ना 8:29। पतित मानवता की एकमात्र आशा यही है कि वह अनुग्रह की वाचा में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करे। यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम उस संबंध का अनुभव कर सकते हैं जो हमें परमेश्वर की संतान एवं मसीह के साथ उसके राज्य के उत्तराधिकारी होने का आश्वासन देता है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर के उस वाचा के लिए जो परमेश्वर हमसे बनाना चाहता है। आदम और हवा परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करके उससे दूर हो गए थे, लेकिन परमेश्वर हम लोगों से वाचा बांधा और इब्राहिम में वह वाचा नवीनीकरण होते हुए देखते हैं। परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है कि वह हमें बचाएगा यदि हम उसमें विश्वास करते हैं। परमेश्वर पाप से बचाने के लिए हमें उपाय पहले से रचा था। परमेश्वर आपातकालीन के लिए तैयार था, परंतु मनुष्य के पाप करने के बाद इसे बतलाया गया, इसे दर्शाया गया। उससे पहले इसे नहीं बतलाया गया था, पर जब आदम और हवा पाप किए, परमेश्वर तुरंत काम करने लगा और यीशु मसीह में हमें बचाना चाहता है। आइए हम इस वाचा में बंधे और यीशु मसीह में विश्वास करें और विश्वास करके इब्राहिम के समान स्वर्गराज के वारिस बने। परमेश्वर आपको और मुझे हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के समीप आते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे हृदयों को ग्रहण कर। पिता हम तुझे स्वीकार करते हैं, तेरे वचनों को हम स्वीकार करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह और उसके बलिदान को अपनाते हैं। तू अपने अनुग्रह के द्वारा, नई वाचा के द्वारा हमें बचा ले। तेरा वचन हमारे हृदयों में लिख दे ताकि हम तेरे प्रेम से भर कर तेरे वचनों को आमीन।
का देता है धन, बीज का ये नाश करे दबा दे यीशु के वचन, दबा दे यीशु के वचन, डूबला लच में डूबा है मेरा मन जग की चिंता।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।